الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ یوسف کی تفسیر ہم معرف القرآن کی جلد نمبر 5 سے پڑھ رہے ہیں اس والی کلاس میں. اس میں شروع کی جو 6 آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، خلاصہ تفسیر پڑھ لی ہے، اور معارف و مسائل پچھلی کلاس میں ہم نے شروع کر دیے تھے. تو اس میں کافی لمبی ڈسکشن پچھلی کلاس میں یہ ہو گئی تھی کہ جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف و مسائل میں دوسرے پیراگراف کے آخر میں لکھا تھا کہ اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا، یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے بالکل آخری بات جو ٹینجنٹ پہ جا کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں ہم، تو وہ کیا تھی، اگر کوئی اس سے اخذ کیا ہوا نقطہ کسی کو یاد ہو. جی، کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہو، تمہیں یاد ہو نہ یا نہ یاد ہو، لیکن کسی کو تو یاد ہو، تو کیا نقطہ آخر میں ذرا لمبی بحث تو خیر نہیں تھی، لیکن لمبا بیان ہو گیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ انسان کا مقصد ہر قصے و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے. اور اس سے پچھلی والی جو لائن لکھی تھی کہ پچھلی والی لائن ایکچولی اس سے امید ہے کہ کسی کو یاد آ جائے، right? کہ اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی. اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی. بعض جگہ قصے کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایسے کیا. ٹھیک ہے، کیوں کیا؟ چلیں تھوڑا ہنٹ دے دیتے ہیں آپ کو، کیوں کیا؟ جی ماشاءاللہ، آپ تو آج کل چھا رہے ہیں. ہم کالج میں کہا کرتے تھے، جب کوئی والی بال میچ میں ذرا اچھا شاٹ مارتا تھا نا، تو سارے لڑکے کہتے تھے چھا گیا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ منور انکل جو ہے وہ آج کل چھا گئے، تو صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں. جی، مقصد پر فوکس رکھنا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے نہیں ذکر کری کہ مقصد پر فوکس رکھنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. مقصد پر فوکس رکھنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، سٹیپس لینے پڑتے ہیں، ایکشنز لینے پڑتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے مثال کیا بیان کری تھی، اب تو کوئی بتا دے بھائی ان کے علاوہ. اس کی کیا مثال بیان کری تھی؟ جی، اپنی غلطیوں کا جب تک ادراک نہیں ہوگا نا، تو ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسرے کی غلطی ہی نظر آتی رہیں گی. ہمارا مسئلہ ہی قومی مسئلہ اس وقت کیا ہے، ہمیں دوسروں کی غلطیاں ہی نظر آتی رہتی ہیں، ہم ادھر سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے نا، تو ذرا اپنی غلطیاں تو کھولیں گے نا، تو تھوڑی شاید توجہ ہماری اپنی غلطی کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، آپ خود نہیں کھولتے تو ہم ہی کھول دیں کم از کم، کوئی تو کھولے نا اپنی غلطیوں کو، تو شاید دوسروں کی غلطیوں کی راگ الاپنے سے ہم باز آئیں اور اپنی غلطی کی طرف دیکھنا شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے شاید پھر دعا مانگ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ لے بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعا کو سنتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر مثال کیا بیان کری تھی؟ جی، 37 स्टूडेंट्स तो नजर आ रहे हैं कम से कम. क्या मिसाल बयान करी थी इसके ऊपर, मकसद के ऊपर फोकस कैसे रहता, इस फोकस का एहतमाम ही कोई नहीं किया गया. ठीक है, तो डी फोकस, बिल्कुल डी फोकस, लगता है जैसे पहले दिन से ही डी फोकस हो गए, है ना, या कम से कम पहले दिन से अगर डी फोकस नहीं भी हुए तो डेढ़ दो साल के अंदर अंदर कंप्लीटली डी फोकस हो गए. ठीक है, क्या मिसाल थी भाई, नहीं रखनी अपनी इन गलतियों पे नजर, ना नहीं देखना ना बस, ठीक है नहीं देखना तो नहीं देखना. कर लो जो करना है जी, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे. बताएं जी, कुछ लिख ही लिया करें भाई, किताब कॉपी उसके ऊपर अगर कुछ लिख लें तो आपको हम ये नहीं कह रहे आप रिकॉर्डिंग सुने पिछले क्लास की, आप एक हफ्ते तक जो है वो बातों को याद रखें, लेकिन अगर नोट्स कुछ जॉट डाउन कर लेंगे तो उन्हीं को देख करके अगले हफ्ते याद आ जाएगी ना बात. ठीक है ना, तो लिख लिया करें, इतना नाकदरी ना करें, इतनी नाकदरी ना करें, मुश्किल पड़ जाएगी फिर. ठीक है ना, ये अल्लाह की किताब की बात हो रही है, किसी ऐरे गैरे नथू गैरे की किताब की बात नहीं हो रही है, अल्लाह से डरना चाहिए. ठीक है ना जी, जज़ाकअल्लाह, आपने सही जवाब दिया, पाकिस्तान की मिसाल, पाकिस्तान की मिसाल. क्यों बनाया था पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब था तो भाई उसको इस मकसद के ऊपर फोकस रहने के लिए भी तो कुछ करना था ना, राइट, उसके ऊपर तो फोकस खत्म है. हिजरत करके आ गए, जाने गंवा के, इज्जतें गंवा करके सारे के सारे आ गए, और यहाँ पर भी रहने वालों ने बड़ी मेहनतें करी, लेकिन किस किस तरफ मेहनत करी, दुनिया की तरफ मेहनत करी, सवाए चंद एक उलमाए कराम के और उनके साथ जो चंद लोग थे जिन्होंने के दीन की हिफाजत की मेहनत करी, मदरसे बनाए, दारुल उलूम बनाए, विफाकुल मदारिस बनाया, तालीमी निज़ाम की जो है वो बेहतरीन जो है वो उसकी तरतीब बना करके प्रेजेंट करी, लेकिन अवाम अवाम उन्नास जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है, डोंट केयर. क्या था पाकिस्तान का मतलब, हु केयर्स, राइट, हमने तो ऐसी दौड़ लगानी है कि अब जो है ना वो आजादी मिल गई है, अब तो हमने आजादी के साथ दुनिया को कमाना है, आजादी के साथ दुनिया के पीछे भागना है. ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कई सालों तक ढील दी है ना, और दुनिया जो है वो आती गई आती गई, एशियन टाइगर बन गए. ठीक है ना, और उसके बाद जो रस्सी खींची है, उसके बाद जो रस्सी खींची है तो बस वो खींची चली जा रही है, खींची ही चली जा रही है. ठीक है भाई, तो तौबा करनी चाहिए अपनी इस गलती से, मकसद के ऊपर इंसान की नजर जमी रहे और उसको जमाने के लिए एहतमाम करे, असबाब इख्तियार करे, याद दहानियां करवाए. ठीक है ना, औलाद को भी याद दहानियां करवानी पड़ती हैं कि बेटा आपको इस दुनिया के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने लट्टू खेलने के लिए नहीं भेजा है, है ना, लूडो खेलने के लिए और स्विमिंग करने के लिए और ये हरकतें करने के लिए नहीं भेजा है. लड़कों को याद दिलाया करें, लड़कों को याद दिलाया करें कि लड़कों तुम लोगों को जो रोजाना शाम को हम खेलने के लिए बाहर भेजते हैं ना, इसलिए नहीं भेजते कि तुम कोई गॉड गिवन राइट लेकर के आए हो खेलने कूदने का. गॉड गिवन राइट है तुम्हारे पास कि तुम्हारी बहनें जो है, दीनदारों की बात हो रही है ना, दीनदारों के घरों में तो लड़कियां नहीं इस तरह से खेलकूद करने के लिए बाहर जाती है ना. ठीक है ना, तो तुम्हारी बहनें जो है वो घर में बैठी रहे और तुम जो है वो बाहर जाकर के खेलते रहो, तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा गया था, ये मकसद है तुम्हारा, नहीं, तुम्हें खेल कूद के लिए हम इसलिए नहीं भेज रहे कि कोई तुम्हारा ये हक है, बल्कि तुम्हारा मकसद जिंदगी ये है कि तुमने अल्लाह के दीन की मेहनत करनी है और उसके लिए तुम्हें जिस फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, जिस सेहत की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें खेलकूद के लिए हम भेजते हैं ताकि तुम तैयार रहो अपने असल काम के लिए. और लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि एक तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पर्दा फर्ज किया है और दूसरा ये कि दावत तबलीग और जिहाद उनकी जिम्मेदारी नहीं लगाई अल्लाह ताला ने, नहीं लगाई है उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने. तो ये मकसद जो है ना वो लड़कों को बताया करें, सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं डंडा लेकर के पर्दा करवाया करें उनको, वरना लड़की भी जो है ना वो भी रिबेल करती है कि क्या मुसीबत है, मेरे भाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मेरे भाई की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सारा मेरा ही सारा का सारा मकसद है, मेरी जिंदगी का सारा पाबंदी है और मकसद है मेरे ऊपर, ठीक है। तो आपकी बेटियां जो है फिर इस तरीके से अंदर ही अंदर जो है ना वो रिवोल्ट कर रही होती हैं, रिबेल कर रही होती हैं। तो मकसद जो है उसको याद करवाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे चलें। इसीलिए बाज अहले तहकीक ने फरमाया कि इंसान के कलाम की जो दो किस्में खबर और इंशा मशहूर हैं, जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं सर्फ नहव वगैरह, तो नहव के अंदर जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमले की दो किस्में होती हैं। तो इन दोनों किस्मों में से मकसूद असली इंशा ही है। मकसूद असली जो है ना वो इंशा है। जुमला इंशाइया क्या होता है? जो खबरिया नहीं होता है। खबरिया क्या होता है? जिसके अंदर कोई न्यूज दी जा रही हो, है ना, कोई आपको बताया जा रहा हो कि अच्छा ऐसा हो गया या ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, ये खबर होती है, न्यूज होती है। तो जिस जुमले के अंदर खबर दी जा रही होती है उसको जुमला खबरिया कहते हैं। इसके अलावा जितने जुमले की किस्में वो सारी की सारी जुमला इंशाई हैं। इसमें क्या होता है? अमर, नहीं, इस्तेफहाम, तमन्नी, तरज्जी, उकूद, निदा, और एक जो है वो हमेशा रह जाता है जहन में से, जो भी है। तो अमर का मतलब हुक्म देना, नहीं का मतलब मना करना, इस्तेफहाम का मतलब सवाल करना, तमन्ना का मतलब तमन्ना करना, तरजी का मतलब उम्मीद करना, निदा का मतलब किसी को पुकारना। तो ये सब के सब जो है वो जुमलाए इंशाइया होते हैं। तो इंशाइया को इंशाइया कहते क्यों है? क्योंकि उसमें आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, खबर में क्रिएट नहीं कर रहे होते। खबर में तो जो ऑलरेडी चीज क्रिएट हो चुकी होती है या हो रही होती है या होनी होती है उसकी आप जो है वो न्यूज दे रहे होते हैं। इंशाइया में आप क्रिएट कर रहे होते हैं किसी एक्शन को। तो फरमाते हैं कि खबर बहैसियत खबर कभी भी मकसूद नहीं होती, बल्कि दानिशमंद इंसान का मकसद हर खबर और वाकये को सुनने और देखने से सिर्फ अपने हाल और अमल की इस्लाह होनी चाहिए। है? सारी की सारी खबरों का मकसद क्या है? इस्लाह। क्या मतलब? टू इनिशिएट करेक्शन, करेक्टिवनेस, ठीक है ना। तो ये है असल मकसद। इंसान इस दुनिया के अंदर इस्लाह के लिए आए, बनने के लिए आए। इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर फॉल्ट्स के साथ भेजा है, फॉल्ट्स के साथ, कल्ब के साथ भेजा है, कल्ब जो कि हर वक्त उलटता पुलटता रहता है। और क्या टास्क लगा करके भेजा है? कि तुम इस कल्ब को सख्त बनाओ, जो कि हर वक्त उलटता पुलटता ना रहता हो, बल्कि जमा हुआ हो अपने मकसद के ऊपर। और वो मकसद क्या? सीखो तुम्हारा मकसद क्या, कि अपने रब को राजी करना, जन्नत कमाना, ठीक है ना। तो कल्ब की इसलाह के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, इस दुनिया के अंदर अपने अहवाल की इसलाह के लिए और अपने माहौल की इसलाह के लिए। पहले अहवाल की इसलाह करेंगे अपने, फिर उसके बाद माहौल की इसलाह करने के काबिल होंगे। तो सारा का सारा जो ड्रामा है, सारा का सारा जो तमाशा है ना इस दुनिया की जिंदगी का, ये इसलाह के लिए है, ये इसलाह के लिए है, राइट। टूरिज्म के लिए नहीं है ये, जाओ जाकर के जाओ वो जन्नत, वो जमीन घूम करके आ जाओ, ठीक है ना। घूमने फिरने के लिए जन्नत बहुत थी, जन्नत में जमीन से ज्यादा अच्छे अच्छे मनाजर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो घूम फिरने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा गया है, खेल कूद करने के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा गया है। खेल बराए खेल, खेल बराए खेल जायज ही नहीं है हमारे दीन के अंदर। खेल का मकसद भी इसलाह, खेल का मकसद भी इसलाह। और यही हम कह रहे थे कि बच्चों को याद दिलाना पड़ता है, हमें तो अब्बा को खुद याद नहीं रहता तो बच्चों को क्या याद दिलाएंगे, ठीक है। तो जो इसलाह से गाफिल हो गया ना, और जहां जो इंसान इसलाह से गाफिल हो गया, उसने अपनी इस मकसद जिंदगी को भुला दिया, तो वहीं से उसकी बिगाड़ शुरू हो गई, बिगाड़ शुरू हो गई, ठीक है ना। अब कितने मुरीद लोग, सालिक लोग, जो कि मशायक से जाकर के बैत कर लेते हैं जी, राइट, इस्लाही ताल्लुक बना लिया, लेकिन इस्लाह विस्लाह कोई नहीं। बैत क्यों क्यों कर ली? पता नहीं, उड़ने के लिए बैत कर लिया है। हाँ भाई, मेरी इस्लाह हो जाए कि मुझे उड़ना नहीं आता, मुझे उड़ना मैं सीख लूं उस शेख साहब के पास जाकर के। करामतें करना मुझे नहीं आता, तो शेख करामती, हजरत करामती के पास जाकर के मैं भी करामतें सीख लूं, ये मेरी इस्लाह हो जाए, है ना। नहीं, इस्लाह नफ्स की इस्लाह, कल्ब की इस्लाह, ठीक है ना। तो अगर शेख के पास जाकर के इसने जो है ना वो इस्लाह भूल गया, और जो है ना वो शेख के साथ, शेख की जैसे अभी पिछले दिनों मैसेज भी एक लिखा था इस फकीर ने,
शेख की आंखों का तारा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आंखों की तारा, आंखों का तारा इस्लाह के जरिए से बना बना जाता है। भैया आप अपनी इस्लाह करेंगे तो आप आंखों का तारा बनेंगे, है ना। शेख को भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाकई सिंसियर बंदा है, ये यानी इसने मेरे मकसद को पहचाना है, इसने जाना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बैठ करके, ठीक है ना। लोगों की इस्लाह का मुझे मेरे बड़ों ने जिम्मा दिया है, ठीक है। तो जो मुरीद आकर के इस्लाह अपनी करवाता है, इसके अंदर संजीदा नजर आता है और मुखलिस और सच्चा नजर आता है, तो शेख की निगाहों में उसकी कदर होती है। लेकिन जिसको अपनी इस्लाह की फिक्र ना पड़ी हुई हो, तो वो आकर के जो है ना वो शेख के सामने जो है ना वो नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब वो नंबर कैसे बनाए, गलतियां तो बहुत सारी अपने अंदर हैं, गुनाह भी लगे हुए साथ साथ, है ना। तो वो अब शेख के सामने झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए शेख के सामने झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि शेख की आंखों का तारा बन जाए। कुछ लोग जो है वो दूसरों के हैं, दूसरों के बुराइयां बयान करते हैं शेख के सामने आकर के, ताकि शेख जो है ना वो डिफोकस हो जाए, है ना, और वो इनकी बुराइयों को पहचान ना सकें और दूसरों की बुराइयों में मगन हो जाएं। तो वो दूसरों की बुराइयां आकर के बयान करना शुरू करते हैं शेख साहब के सामने। और कुछ लोग जो होते हैं वो पहले से कुछ पढ़ पढ़ा करके सीख सिखा करके आए हुए होते हैं, तो वो अपने मसल्स दिखाते हैं, है ना, मुझे ये भी आता है, मुझे ऐसा आता है, मैं इतना बेहतरीन जो है वो फलाना काम करता हूँ, और मैं इतना बेहतरीन, है ना। भाई आप शेख के सामने इसलिए आए थे, है ना, कोई आपने शेख साहब ने बिल्डिंग बनानी थी तो आप जो है वो अच्छे यानी क्या हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो आप शेख साहब को जो आकर के बता रहे हैं कि जी मैं आपकी बिल्डिंग बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, है ना, यू नीडेड हेल्प, आई एम हेयर हजरत, हजरत जी आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है ना। तो भाई हजरत जी का ये काम तो नहीं है ना, है ना, ये असल काम तो नहीं है ना। जो असल काम नहीं कर रहा होता ना, तो शेख तो कहते चलो यार असल ना करो, कोई जमीनी काम ही कर लो, है ना, लगे तो रहो कम से कम, कल आज इस्लाह में इंटरेस्टेड नहीं हो, उम्मीद करते हैं कल इस्लाह में इंटरेस्टेड हो जाओगे, तो वो जो है वो जमीनी काम भी लगा देते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं होता। तो ऐसा जो मुरीद होता है ना, जो कि शेख के पास आ तो रहा है लेकिन इस्लाह से गाफिल, ठीक है ना, तो ये इसकी बिगाड़ यानी बिगाड़ की जो है ना वो इब्तदा नहीं होती बल्कि इंतहा होती है इसकी बिगाड़ की। क्योंकि जब किसी को डॉक्टर की नेमत मिल जाए और फिर वो उस डॉक्टर की नेमत की नाकदरी करे, तो उसको ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, उसको ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। जिसको डॉक्टर की नेमत ही नहीं मिली, तो वो उसको डॉक्टर की नेमत की नाकदरी की सजा क्यों मिलेगी, उसके पास तो डॉक्टर है ही नहीं। जिसके पास डॉक्टर है वो डॉक्टर के साथ इस किस्म की हरकतें करेगा, ठीक है ना, तो फिर उसको मुख्तलिफ पैरायों के अंदर सजा मिल रही होती है। बहरहाल तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को तरतीब के साथ बयान करने की एक हिकमत ये भी हो सकती है कि ये सिर्फ एक वाहिद किस्सा है पूरे कुरान मजीद के अंदर जिसको अल्लाह ताला ने तरतीब के साथ बयान किया, बाकी किसी किस्से को तरतीब के साथ बयान नहीं किया। तो क्या एक हिकमत हो सकती है कि तारीख निगारी भी एक मुस्तकिल फन है, ठीक है ना, यानी एक जिमनी इशारा इससे क्या लिया उलमाए कराम ने कि भाई अल्लाह ताला हो सकता है इंसानों को ये भी दिखाना चाहते हो, क्योंकि इंसान के पास जो भी इल्म है ना, जो भी समझ है, वो उसने अपनी अकल से हासिल नहीं करी है, बल्कि उसकी इब्तिदा जो है वो अल्लाह ही की तरफ से हुई है, चाहे वो अल्लाह के कलाम से हुई हो, चाहे वो अल्लाह के नबी के जरिए से। मिसाल के तौर पर आजकल जो है वो आपको बड़ी अजीब क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड किस्म की गाड़ियां नजर आती हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी तो अल्लाह के नबी ने नहीं बना के बताई कि कैसे गाड़ी बनानी चाहिए, ठीक है, लेकिन पहिया बिल्कुल बुनियादी जो गाड़ी की बुनियाद होती है जिससे कि कोई चीज मूव करती है जमीन के ऊपर, वो पहिया होता है, और पहिया जो है वो अल्लाह के नबी ने बना के सिखा दिया, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है उसको, ठीक है ना। उसी तरह लिखने की बहुत सारी किस्में आज जो है वो आप लैपटॉप के ऊपर भी लिख रहे होते हैं, अपने फोन के ऊपर भी लिख रहे होते हैं, आप कागज पेंसिल के ऊपर तो बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन कलम की जो इब्तिदा है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है कि कलम जो है वो उन्होंने सिखा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से तारीख निगारी, तारीख को लिखना, ये भी एक फन है जो कि अल्लाह ताला ने यानी इशारतन मुफस्सिरीन ने बयान किया कि इस किस्से को तरतीब के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने इंसानियत को तारीख निगारी जो है वो सिखाई, ठीक है।
तो इसमें इन इस फन वालों के लिए खास हिदायत है, ठीक है। अब ये यहां पर ये कोई कह सकता है कि जी तारीख निगारी तो कुरान मजीद के नाज़िल होने से पहले भी होती थी, ठीक है। तो इस पे ये कहा जा सकता है कि तारीख निगारी की जो जो फॉल्ट्स थी, उन फॉल्ट्स को जो है वो दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर हिदायत दे दी इस किस्से के वास्ते से। तो वो फरमाते हैं कि खास हिदायत हैं कि बयान में ना इतना इख्तसार होना चाहिए जिससे बात ही पूरी ना समझी जा सके, और ना इतना तूल होना चाहिए कि उसका पढ़ना और याद रखना मुश्किल हो जाए, जैसे कि इस किस्से के कुरानी बयान से वाजह होता है, ठीक है। तो गोया कि लोग पलक तारीख निगारी की दुरुस्त करी इस किस्से को बयान करके। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि बाज रिवायात में है कि यहूद ने आजमाइश के लिए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बतलाइए कि आले याकूब मुल्क शाम से मिस्र क्यों मुंतकिल हुए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया किया था, ठीक है। तो जैसे कि और भी सवालात यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से किए थे बिल वास्ता या बिला वास्ता, वो जो तीन मशहूर सवाल हैं जो कि मुशरिकीन मक्का ने जाकर के यहूदियों से हासिल किए थे, फिर आकर के क्या थे वो असहाबे कहफ कौन है, जुलकरनैन कौन है, और रूह क्या है। तो इनके जवाब जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर दिया और सूरह बनी इसराइल के अंदर रूह का के सवाल का जवाब दिया। उसी तरीके से एक सवाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी था, तो उनके जवाब में बजरिया वही ये पूरा किस्सा नाजिल किया गया जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का बड़ा शाहिद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी महज थे और उमर भर मक्का मुकरमा में मुकीम रहे। उम्मी महज यानी बिल्कुल प्योरली जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनलेटर्ड थे, पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। हुरूफ जो लिखे होते थे ना उनको पढ़ना नहीं आता था। तो उमर भर मक्का मुकरमा मुकीम रहे यानी किसी जगह रिहाइश इख्तियार नहीं करी। हाँ सफर तो किए, बचपन में जो सफर किया वो तो वापस कर दिया गया, बुहीरा राहिब की मशवरे के ऊपर अबू तालिब ने जो है वो वापस कर दिया। बाद में जो जब जवान होकर के 20 साल की उम्र के अंदर सफर किया तो वो भी सिर्फ एक सफर था जिसके अंदर के खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेके गए थे और उसके अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफिट लेकर के जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है। मुकीम कहीं भी नहीं रहे, किसी से तालीम हासिल नहीं की और ना कोई किताब पढ़ी। फिर वो तमाम वाकयात जो तौरात में मजकूर थे सही सही बतला दिए, बल्कि बाज वो चीजें भी बतला दी कि जिनका जिक्र तौरात में नहीं था, और इसके जमन में बहुत से अहकाम व हिदायात हैं जो आगे बयान होंगी, ठीक। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का के मौजों में से एक मौजा था। तो सबसे पहली आयत में हरूफ अलिफ लाम रा मुकत्तआत कुरआनिया में से हैं जिनके मुतअल्लिक जमहूर सलफ सहाबा व ताबईन का फैसला ये है कि ये मुतकल्लिम और मुखातब यानी अल्लाह ताला मुतकल्लिम हैं कुरान मजीद के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं, उनके दरमियान एक राज है जिसको कोई तीसरा आदमी नहीं समझ सकता और ना उसके लिए मुनासिब है कि उसकी तहकीक के दर पे हो, ठीक है, उसके दरवाजे पे जाके पड़ जाए कि क्या तहकीक है मैं करूंगा, और उसके ऊपर खूब टाइम लगा रहा है। फिर भी कुछ उलमा ने जो है वो तहकीक इसकी करी है, लेकिन वो भी जो अहले हक उलमा थे उन्होंने एहतियात ये करी कि पीछे ना पड़ जाए इसके, ठीक है। दरपे होने का मतलब होता है आप बस किसी के ना हाथ धो करके पीछे पड़ जाए, जैसे कि गोरे लोग तहकीक करते हैं किसी चीज के तो वो हाथ धो करके सब कुछ ही धो धा करके पीछे पड़ जाते हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे नहीं किया, लेकिन एहतमाली दर्जे में उलमा ने फिर कुछ माने वगैरह बयान किए कि अलिफ का यह मतलब है, लाम का यह मतलब है, मीम का यह मतलब है, अल्लाह जिब्राइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ लाम मीम का जो है वो एक एहतमाली मतलब ये उलमा ने बयान किया, हो सकता है ये मतलब हो। अलिफ जो है वो अल्लाह के लिए, लाम जो है वो जिब्राइल का जो आखिर का हर्फ है लाम, और मीम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से वास्ता जिब्रील के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम है कुरान मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह तिल्का आयातुल किताब मुबीन, यानी ये हैं आयतें उस किताब की जो अहकाम हलाल व हराम और हर काम की हुदूद व क़ुयूद बतलाकर इंसान को हर शोबे जिंदगी में एक मोतदल सीधा निज़ाम हयात बख्शती है कि जिनके नाजिल करने का वादा तौरात में पाया जाता है।
और यहूद इससे वाकिफ है। ठीक है, हलाल और हराम और हुदूद और कुयूद। ठीक है, तो ये बताने के लिए, यानी ये असल मकसद है इस किताब का, किस्से कहानियां जो है वो उसका वास्ता है, जरिया है वो बात समझाने के लिए, लेकिन असल मकसद हलाल हराम और हुदूद और कुयूद है। तो जिसने असल मकसद ही को भुला दिया तो फिर उसका हशर कैसा होता है? बिल्कुल पाकिस्तान जैसा उसका हशर होता है ना, हर जगह जो है वो फसाद और सड़कें भी टूटी भी और पानी भी नहीं आता और बिजली भी नहीं आती और गैस भी नहीं आती। मकसद को भुला दिया ना तुमने, अल्लाह ताला ने दुनिया से भी महरूम कर दिया, दीन को तो तुमने पसंद ही नहीं किया था, दीन को पसंद नहीं किया अल्लाह ताला ने, दुनिया से भी तुम्हें महरूम कर दिया है ना, और फिर कर लो जो करना है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इजादात करो, लेकिन जिल्लत और रसवाई तुमसे दूर नहीं होगी जब तक तुम अल्लाह को राजी करने की फिक्र ना शुरू करोगे और अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे। ठीक है, तो असल मकसद कुरान मजीद का नहीं हासिल किया, बल्कि वही हर वक्त कोई है ना, किसी का कोई बीमार पड़ गया, जी मुझे वो कुरानी वजीफा बता दीजिए, है ना, फिर कोई बीमार पड़ जाता है, फिर वो कुरानी वजीफे के लिए जो आ जाते हैं। भाई कुरान का मकसद जो है वो जिस्मानी शिफा असल मकसद तो नहीं था ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने रखा है शिफा उसके अंदर, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लो भाई, हमने अपने हजरत को भी ये देखा है ना, जो आता है जी वो कुछ वजीफा पढ़ के दम कर दिया, सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर लो उसके ऊपर। ठीक है, ये कोई वजीफों का अंबार लगाने से तो शिफा नहीं हासिल होती है, दवाओं का अंबार लगा लिया भाई, कुरान मजीद की सूरह फातिहा सूरह शिफा है ना, और उसकी आपको ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई शक शुबा के नहीं, अच्छी ये इट्स नॉट अ पोर्टेंट इनफ मेडिसिन, राइट भाई, है पोर्टेंट मेडिसिन, अल्लाह का कलाम है और सूरह फातिहा जो है वो पूरे सूरह बकरा का खुलासा भी है, और सूरह बकरा जो है पूरे कुरान का खुलासा भी है, और पूरा कुरान जो है सारी की सारी आसमानी किताबों का खुलासा है। ठीक है, तो फिर सूरह फातिहा में क्या मसला है आपको? तो बस भाई, अगर जिस्मानी शिफा का मसला भी है तो सूरह फातिहा से पढ़ करके दम कर लें, बाकी असल मकसद तो रूहानी शिफा है, राइट, और वो रूहानी शिफा कैसे मिलेगी? यही हुदूद और कुयूद सीख करके और उनके ऊपर अमल करके। ठीक है, तो इन्ना अंजल्लाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, यानी हमने नाजिल किया इसको कुरान अरबी बनाकर कि शायद तुम समझ बूझ हासिल करो। ठीक है, तो इसमें इशारा इस तरफ है कि किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का सवाल करने वाले अरब के यहूदी थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं की जुबान में ये किस्सा नाजिल फरमा दिया कि वो गौर करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क व हक्कानियत पर ईमान लाएं और इस किस्से में जो अहकाम और हिदायत हैं उनको अपने लिए मिशाल राह बनाएं। ठीक है, तो यहूदियों की असल जुबान जो थी वो तो इब्रानी थी या सुरियानी उससे पहले। ठीक है, लेकिन जब अरब के अंदर मूव हो गए थे, और ये मूव भी कुछ चंद साल पहले नहीं हुए थे, ये यानी इनकी कुछ नस्लें जो है यहाँ पे पल बढ़ करके जवान हो चुकी थी, तो अब इन्होंने अरबी को अडॉप्ट कर लिया था और ये यानी यहूद अरब कहलाना शुरू हो गए थे, क्योंकि जुबान से बनता है अरबी। ठीक है, तो जो भी अरबी जुबान बोलता है तो फिर वो अरबी कहलाता है। आज जो है वो आपका इराक जो है पूरा को पूरा अरब है, हालांकि इराक जो है वो असलन तो अरब नहीं था, और शाम जो है वो असलन अरब का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अब जो है वो अरब मुल्कों में शुमार होता है, शाम का भी, मिस्र का भी, और इराक का भी, और जहां भी इस तरह से अरबी बोली जा रही होती है। तो इन्होंने भी अरबी को अडॉप्ट कर लिया था, या अरबी ने इनको इनके ऊपर छा गई थी अरबी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ, जिसका ताल्लुक जो है वो इन्हीं के सवाल के साथ था, अल्लाह ताला ने इसको कुरान मजीद में नाज़िल किया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क व हक्कानियत पर ईमान लाएं और इस किस्से में जो अहकाम हिदायत हैं उनको अपने लिए मिशाल राह बनाएं। लअल्लकुम ताकिलून की एक तफसीर किसी आलिम से ये भी सुनी कि जो अरबी जुबान सीखता है ना, कुरानी अरबी है ना, आजकल की वो बंगाली अरबी नहीं ना, राइट, तो किदा किदा और पता नहीं क्या क्या, मुझे बस किदा किदा याद रहता है, तो किदा किदा वाली अरबी नहीं, बल्कि कुरान मजीद की जो अरबी है, फुसहा अरबी जिसको कहते हैं, तो अरबी जुबान सीखने से जो है वो उसकी अकल भी जो है वो तेज होती है। ठीक है ना, तो ये वैसे दुनियावी मकसद एक नजर आता है, लेकिन एक फजाइल में से एक फजीलत है भाई, अरबी जुबान से अकल भी तेज होती है। वैसे अरबी जुबान की एग्जैक्टनेस और प्रिसिशन और ये सारी अपनी चीजें, लेकिन एक ईमान वाले के लिए अरबी सीखने की वजह क्या है कि अल्लाह का कुरान अरबी के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अरबी है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अरबों से मोहब्बत करने की वजह क्या बयान करी कि अरबों से मोहब्बत क्या करो कि मैं अरबी हूँ, अल्लाह का कलाम अरबी में है और जन्नत की जुबान अरबी होगी। ठीक है ना, इसलिए नहीं कि अरब जो है वो तुम्हारे साथ बड़े नेक सलूक करें तो इस वजह से उनसे मोहब्बत क्या करो, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले लोग हैं इस वजह से उनसे मोहब्बत क्या करो, नहीं, जुबान की वजह से इनसे मोहब्बत क्या करो। ठीक है, और मेरी निस्बत की वजह से इनसे मोहब्बत क्या करो, निस्बत वजह होती है असल। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम खुद भी अरबी जुबान सीखने का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी अरबी जुबान सीखना जो है ना उसको प्रायोरिटी दें। अल्लाह ताला यहाँ भी डरा करें, हम दुनिया के उलूम के लिए कितनी प्रायोरिटी देते हैं, कितनी कुर्बानियां करते हैं, है ना, कितना जो है वो हर चीज जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं, है ना, कि वो क्लास मिस ना हो जाए, टेस्ट मिस ना हो जाए और जो है वो असाइनमेंट मिस ना हो जाए। अरबी जुबान के लिए हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, अरबी जुबान को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो अल्लाह को फिर क्या जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे, दुनिया के अंदर ही फिर हमारे मामला खराब होने शुरू हो जाते हैं इसी वजह से। तो अरबी सीखना ये हर मुसलमान को अपने ऊपर जो है ना, जिसको अल्लाह ताला ने कुछ पढ़ने लिखने की सलाहियत दी है, अब जो जो किसान जो है वो खेत के अंदर हल चला रहा है वो तो साइंस नहीं पढ़ रहा ना, वो तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा ना, मोची साहब जो अपने खोखे में बैठ करके जो है वो जूता टाक रहे हैं वो साइंस मैथ और बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहा होता ना, राइट। लेकिन आपके पास जब अल्लाह ताला ने पढ़ने की सलाहियत दी है और आप जो है वो सारे के सारे उलूम दुनियाविया पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अरबी जुबान ना पढ़ें। ठीक है, या अपने बच्चों को अरबी जुबान ना पढ़ाएं। ठीक है, सलाहियत के हिसाब से देखा जाएगा तो। और फिर अरबी जुबान जो है ये एक टूल है, ये एक आला है। ठीक है ना, लैंग्वेज जो होती है वो टूल होती है उलूम के खजानों को खोलने के लिए। जिसके पास टूल ही ना हो वो कभी भी खजानों को नहीं खोल सकता। फिर वो जो है वो कुरान को भी जो है वो अंग्रेजी और उर्दू में समझने की कोशिश करेगा और मजीद जो है वो बेड़ा गर्क करेगा। ठीक है, अगर उसको कुछ दीन की तरफ दिलचस्पी पैदा हो गई तो अंग्रेजी उर्दू के फिर जरिए से। ठीक है, तो भाई कुरान तो अरबी के अंदर है तो अरबी सीखे बगैर जो है ना वो तफसीर भी जो है ना वो नहीं नहीं समझ में आती है अगर कुछ शुद्ध बुद्ध जो है वो अरबी ग्रामर की ना हो तो। अच्छा, इसलिए इस जगह लफ्ज लाल्ला बमाने शायद लाया गया है क्योंकि इन मुखातबों का हाल मालूम था, यानी इन यहूदियों का हाल मालूम था कि ऐसी वाजह आयात बयनात सामने आने के बाद भी उनसे कबूल हक की तवक्को मशकूक थी। लाल्लकुम ताकिदून, ठीक है, मशकूक थी, बस उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह का लफ्ज ला करके। ठीक है, तो इनका हशर जो है, जो सीरत को जरा गौर से पढ़ते हैं सुनते हैं और जो लोग फिर उस फकीर की सीरत की जो क्लास चल रही है तो उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इस वक्त प्योरली यहूदियों का ही जिक्र कर रहे हैं, है ना, जो गजवा बनी बनी कुरैजा, गज़वा अहज़ाब के फौरन बाद जो बनी कुरैज़ा का गज़वा था तो उसके अंदर इनकी जो जिद और अनानियत की इंतहा थी, सब कुछ जानते बूझते हुए उनका अपना सरदार इनको बोल रहा है ना, बनू कुरैज़ा का सरदार इनको बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि ये सच्चे हैं और ये दीन हक है तो मान जाओ इनकी बात, लेकिन इस मामले में जहां इनकी इनके नफ्स के ऊपर चोट पड़ती थी ना, इन्होंने अपने सरदार की बात मानने से भी इनकार कर दिया, अपने ही सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, सबको जानते बूझते हुए और हत्ता के जान देने के लिए तैयार हो गए, राइट। इनको पता था कि इनकी गर्दनें काट दी जाएंगी, लेकिन गर्दनें कट रही हैं लेकिन अपने हट धर्मी से नहीं हट रहे हैं, अपनी जिद और अनानियत के ऊपर जमे हुए हैं। जैसे अबू जहल जो है ना वो जमा हुआ था ना, उसने गर्दन कटने से पहले भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा था, है ना, और कैसी कैसी जो है वो उसने तकबर वाली बातें करी थी अबू जहल ने गज़वा बदर के अंदर। उसी तरीके से इन लोगों ने भी जो है ना गर्दन कटने से थोड़ी देर पहले तक भी जो नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा था, हुयै बिन अख्तब ने, है ना, और इनके बाकी लोगों ने। हालांकि उस वक्त भी इनके पास ऑप्शन था, तौबा कर लेते, मान लेते, एक दो ने जो है वो मान लिया, वो बाद में बड़ी अल्लाह ताला ने उनको इज्जतें दी, सहाबी बने और बहुत आगे गए वो। ठीक है, तो इनका ये किरदार था, तो इस वजह से जो है ना वो फरमाया कि इनसे कबूल हक की तवक्को मशकूक थी। हमें भी अपनी गर्दन में गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमारी भी जिद जो है वो कहीं इस लेवल की तो नहीं है कि पिट भी रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, मुसीबतें मुश्किलें, है ना, اتنی مہنگائی اس وقت ہوئی ہوئی ہے کہ لٹرلی اب لوگ بلبلانا شروع ہو گئے, بلبلانا شروع ہو گئے, لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے. اپنے جو ہے نا وہ جو حرام خوری کی جو عادت پڑی ہوئی ہے نا, اور جھوٹ اور دھوکے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے نا, اس سے نہیں توبہ کر رہے ہیں. تو کیا یہودیوں نے اگزیکٹلی یہی کام کیا تھا نا, اور جو ہے وہ ابو جہل نے تو اگزیکٹلی یہی والا کام کیا تھا. اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی ایک نا یعنی پھر بھی جو ہے نا بس ہر دھرمی میں جمے ہوئے جمے ہوئے جمے ہوئے ہے نا, میں نہ مانوں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیوں نہیں کرتے, اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ آج صبح خواتین کی کلاس کے اندر معراج کا واقعہ ہم نے پڑھنا شروع کیا, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء والمعراج چل رہی ہے اس کلاس کے اندر. تو وہاں پہ بھی آخری بات یہی کر کے ختم کری تھی کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ سدرا بیری کا درخت تھا, اس کے اوپر سونے کے فرشتے گر رہے ہیں, یا سونے کے کیا کہتے ہیں پتنگے گر رہے ہیں نا. اور اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو بیت المعمور ہے اس کا طواف کرنے کے لیے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں, اور وہ طواف کر کے جب جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے, پھر دوبارہ پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں, پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں, پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں نئے, اور یہ سلسلہ چلا چلا جا رہا ہے. رائٹ, روزہ مبارک کے اوپر جو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, صبح کو بھی 70,000 فرشتے وہ واپس جاتے ہیں دوبارہ نہیں آتے, وہ شام کو نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. رائٹ, اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کیا کوئی ہے نا, باقی کائنات کے خزانوں کو چھوڑ دیں, صرف اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک پاکستانی کا جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. رائٹ, پاکستانی بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور بہت ساری نیکی کام کر رہا ہے, لیکن کوڑی کوڑی کا محتاج ہوا ہوا ہے. رائٹ, بہت بری حالت کے اندر پہنچا ہوا ہے. یہ اللہ کے خزانے کیوں کہاں چلے گئے, سارے کے سارے خزانے کیوں نہیں ملتے؟ یہ خزانے خواہشات پوری کرنے کی بجائے صرف ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کیوں نہیں ہمارے ہاتھ آتے؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے ان خزانوں کے دروازوں کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے بند کر دیا ہے, اور ہمارا حال یہ ہوا ہوا ہے کہ ہم ان خزانوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, ہے نا, ان کی طرف ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ سب موجود ہے, بس ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہاں تک چلے گئے, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات فرما دی کہ حافظ صاحب کیا ہے وہ آیت, وَمَن يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کے, تمہاری نعمتیں چھین. عذاب کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں ان نعمتوں کو. یہ ہوتی ہے عذاب کی تعریف, ڈیفینیشن آف عذاب. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس نعمتیں جو تھیں جو واپس لے لی جا رہی ہیں اور مزید لیے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کے تمہیں عذاب دے کر کے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو گے اس کا اور ایمان لے کر کے آؤ گے, شکر کرو گے, حکموں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو گے. شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے حکموں کو ماننا. ہم تو حکموں کو گھاس ہی نہیں ڈالتے, حکموں کو تو ہم گھاس ہی نہیں ڈالتے, صرف اپنی خواہشات کو گھاس ڈالتے ہیں. ایون اگر وہ دینی خواہشات بھی ہوں, ان کو ہی گھاس ڈالتے ہیں, اللہ کی خواہش کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں. رائٹ, اور آمن تم, نبی علیہ السلام کے جو وعدے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے؟ بالغیب, یہ ملے گا اگر تم ایسا کرو گے تو, جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, جو تم سونگ نہیں سکتے, جو تم چھو نہیں سکتے, وہ تمہیں ملے گا. یہ غیب کی باتیں, اس کو ایمان لانا کہتے ہیں. ہم جو ہیں وہ حاضر کے اوپر, اچھا یہ ایسے ملتا ہے, اس کو مل گیا تو وہ مجھے چاہیے, ये करने से उसको ये मिल गया तो वो मुझे चाहिए। जो हाजिर की चीज है ना, जो 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 हमें अपने फाइव सेंसेस से परसीव होती हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर बिलीव, हम सिर्फ उसके ऊपर बिलीव, तो बिलीव का मतलब तो ईमान होता है, हम सिर्फ उसको जो है ना वो सीरियसली लेते हैं, और बाकी जो जो गैब की बात है नॉन सीरियसली, इसका मतलब ईमान नहीं है हमारे पास, क्योंकि ईमान तो बिल गैब होता है। ठीक है, तो हमें तौबा करनी चाहिए अभी और इसी वक्त। बाकी क्लास का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, इस वजह से यहाँ से आगे इंशाल्लाह तो अभी भी कहेंगे वाखिर दुआ। सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।